आप हैं SBS हिंदी के साथ।
शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में अब भारी बारिश, भूस्खलन और ओलावृष्टि की चेतावनी। भारत में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे जेपी नड्डा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर का आगाज, भारतीय क्रिकेट टीम ने जीती एक दिवसीय सीरीज। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आग से प्रभावित छोटे व्यवसायियों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को $15,000 से बढ़ाकर $50,000 करने की घोषणा की है। इसके अलावा 500,000 तक का कम ब्याज पर ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। ये उन व्यवसायों के लिए होगा जिन्होंने की आग में अपनी पूरी संपत्ति खो दी है या फिर आग के कारण उनकी कमाई में भारी गिरावट आई है। ये पैसा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बुशफायर फंड से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चैनल 7 से कहा कि सरकार हर वो प्रयत्न कर रही है जिससे कि आग से प्रभावित व्यवसायों को दोबारा खड़ा किया जा सके।
Up until now, there's been $15,000 grants in New South Wales. We're increasing that to $50,000. Now, that's to help them with repairs and the cleanup and these sorts of things in their prop in their businesses to give them that support. They go through the state government run organisations, Services New South Wales and New South Wales and similar organisations in Victoria and Queensland. The states actually run these grant programs. We pay for them and they do the assessments. They've got the skilled assessors.
तस्मानिया के ट्रेजरर पीटर गुडविन को राज्य के 46वें प्रीमियर और लिबरल नेता के तौर पर चुना गया है। उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है। वरिष्ठ मंत्री माइकल फर्ग्यूसन के दौड़ से बाहर हो जाने के बाद ये चुनाव निर्विरोध हो पाया। पीटर गुडविन विल हॉडमैन की जगह लेंगे जिन्होंने 6 साल के कार्यकाल के बाद ये पद छोड़ दिया था। पीटर गुडविन ने कहा कि कुछ मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
We will not betray that trust and we will continue to be the government that they elected. However, there is more to do. Demand in health remains at elevated levels and we need to do more. Demand for housing hasn't abated and we need to do more. A rapidly changing climate is now the new normal and we must learn from the recent lessons of the mainland bushfires and once again we must do more.
ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने विक्टोरिया में ख़राब मौसम को लेकर चेतावनी दी है। पिछले सप्ताहांत में भारी बारिश और तूफान के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि मेलबर्न के कई उपनगरीय इलाकों में गोल्फ बॉल के आकार जितने बड़े ओले गिरे थे। ब्यूरो का कहना है कि तेज़ आंधी की वजह से भारी बारिश की संभावना है जिससे फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। BOM के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी केविन पार्किन कहते हैं कि मौसम की स्थिति जटिल है।
It's not unusual this time of year to expect severe thunderstorms, but this is on the back of quite a significant fire season. And so we not only have risks in areas that we have firefighters in the community that have been engulfed by fire, but also in metropolitan Melbourne and regional Victoria, where some of these severe storms have produced flash flooding, damaging wind gusts and giant hailstones.
न्यू साउथ वेल्स में भी राज्य के ज़्यादातर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में तेज़ आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी में 13 जिलों को संवेदनशील बताया गया है जो राज्य के उत्तर पूर्व में टैमवर्थ से लेकर पश्चिम में नारंडेरा तक हैं। गॉस्फोर्ड, न्यूकासल, वागा वागा और एल्बरी में तेज़ हवाओं के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस बात से इनकार किया है कि जलवायु परिवर्तन पर सरकार की योजना को लेकर उनकी पार्टी के अंदर विभाजन है। दरअसल ये बात तब की जा रही है जबकि सरकार में पर्यावरण मंत्री मैट कीन ने सरकार से क्योटो प्रोटोकॉल में जमा उत्सर्जन के क्रेडिट पॉइंट का उपयोग छोड़ने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण मंत्री की टिप्पणी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछले चुनाव में एक सामूहिक निर्णय लिया है और वो उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंगम ने स्काई न्यूज़ से यही बातें कही हैं।
The point that has been made, including by Matt Keane, that this all has to be done in ways that don't threaten our economy or undermine Australian jobs is a crucial one, but that is where continuously looking for those new opportunities of new technologies that don't require new taxes or penalties on Australians, but can absolutely put us at the forefront of transformation to be able to achieve even higher levels of emissions reductions than are currently forecast.
विश्व नेताओं ने लीबिया के युद्ध में सभी विदेशी मध्यस्थता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. बर्लिन में वैश्विक नेताओं की बैठक में भाग लेने वालों में रूस, टर्की और फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे. ये सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि युद्ध में हस्तक्षेप रोका जाना चाहिए. हालांकि इस बैठक में स्थायी युद्ध विराम के बारे में कोई फैसला सामने नहीं आया और ना ही कोई ऐसा समाधान जिससे कि लड़ने वाले दलों के बीच बातचीत संभव हो सके. जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि इस मामले में प्रगति अहम है.
We've had very intensive and serious negotiations here in Berlin. And in doing so, we've contributed to a new political approach, a new political impulse, to generate hope for the people and hope for peace in the Libyan conflict.
और अब खबरें भारत से. खबर है कि जेपी नड्डा बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे. आज उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. हालांकि बीजेपी ने संगठन चुनाव की औपचारिकता पूरी करने के लिए चुनाव की अधिसूचना भी जारी की है, लेकिन माना जा रहा है कि कोई भी दूसरा उम्मीदवार न होने की वजह से नड्डा निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे. नड्डा के चुनाव के साथ ही अमित शाह का अध्यक्ष के तौर पर 5.5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. वहीं बीजेपी की कमान संभालने के साथ ही जेपी नड्डा के सामने दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौतियाँ होंगी. CAA, NRC और NPA के विरोध में भारत भर में प्रदर्शन जारी हैं. इस बीच दिल्ली में महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने रविवार को जामिया विश्वविद्यालय के गेट से शाहीन बाग तक CAA विरोधी मार्च निकाला. कुछ स्थानीय लोग महात्मा गांधी तो कुछ BR अंबेडकर बनकर मार्च का हिस्सा थे, तो वहीं 3 लोग कैदियों की पोशाक में जंजीरों में बंधे हुए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बने थे. वहीं सरकार लोगों की इस मांग पर झुकने के मूड में नहीं है. गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि CAA नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है. उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के खिलाफ है जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं.
अगर आप भारत का वासी है तो उसके खिलाफ ये कानून नहीं है. ये कानून तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया से आए हुए उन घुसपैठियों के खिलाफ जरूर है जो भारत के अंदर आतंकवाद पैदा करते हैं, भारत के अंदर उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं.
वहीं CPM नेता सीताराम येचुरी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कहा कि उनकी पार्टी भी देश भर में लोगों के घर घर जाकर NPR, NRC और CAA के बीच संबंध को समझाने का कैंपेन चलाएगी. उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करेंगे कि NPR में शामिल सवालों का जवाब ना दें.
All over the country, we shall go house to house, explain the linkage between NPR and the NRC and the CAA, and why people should not answer any question related to NPR. And the further, the Central Committee has said that all the detention camps that exist in the country must be dismantled. People should be allowed to live like they have been living.
दिल्ली में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वर्तमान में चल रही कुछ योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि मौजूदा योजनाएं सिर्फ चुनाव तक हैं, लेकिन वो चुनावी घोषणा पत्र से पहले गारंटी कार्ड जारी कर रहे हैं.
ये गारंटी कार्ड है, ये मैनिफेस्टो से भी 2 कदम ऊपर है. आज इस गारंटी कार्ड के जरिए हम बता रहे हैं जनता को कि ये बातें अगले 5 साल भी लागू रहेंगी. गारंटी दे रहे हैं इस बात की. आज मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे बिजली सबकी जारी रहेगी.
और अब डॉलर का हाल. आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 48.93 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 68 सेंट्स थी. और अब खबरें खेल के मैदान से. आज से ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड की शुरुआत हो चुकी है। पहले राउंड में सेरेना विलियम्स एक आसान जीत के साथ दूसरे राउंड में पहुंच गई। विलियम्स से चेक गणराज्य की युवा खिलाड़ी एनास्तासिया पोटापोवा को 6-0 और 6-3 से मात दी। ये मैच 58 मिनट तक चला। जाहिर तौर पर विश्व की नौवें पायदान की खिलाड़ी सेरेना की नज़र अपने 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर होगी। मैच के बाद सेरेना ने कहा कि इस प्रतियोगिता के दौरान उनके जहन में वो लोग भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग से प्रभावित हुए हैं।
Well, you know, it's important for people like me who have a big platform to raise awareness. And I always say, I've been saying that I've been coming to Melbourne since 98, believe it or not. And it is a special place in my heart. I have friends here that I consider family all throughout Australia. So for me in particular as a player, it was incredibly devastating because I literally know people who've been affected.
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जा रही 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज़ को 2-1 से जीत लिया है। बेंगलुरु में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में मोहम्मद शमी की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा के शतक और कप्तान विराट कोहली के 89 रनों की मदद से भारत ने एक आसान जीत दर्ज की। मैच में स्टीव स्मिथ के 9वें शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 50 ओवरों में महज 9 विकेट के नुकसान पर 286 रन ही बना सकी। जवाब में केएल राहुल के जल्दी आउट होने के बाद भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी हुई। भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। और अब डालते हैं नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में कल आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बादल छटते हुए दिखाई देंगे, यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में छिटपुट बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में भी बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में कल धूप रह सकती है, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है, अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंधी के साथ बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सुबह के वक्त बारिश की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। खबरों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।